प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 12 अगस्त 2016 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी और मार्च में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं माया, आप न्यू दिल्ली से हैं, सुषमा आप भी न्यू दिल्ली से ही हैं और हिमांशु सचान आप सर्वांगपुर कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो माया, सुषमा और हिमांशु आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आज शुक्रवार है, मेरे जो पुराने श्रोता हैं वे इसके अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन नए श्रोता लगातार डेली ऑडियो गाइडेंस से जुड़ते रहते हैं उनकी सूचना के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। मित्रों पहला तो यह कि सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आता है लेकिन सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज पहले की तरह ही मिलेंगी, यानी कि डेली ऑडियो गाइडेंस सैटरडे को नहीं आएगा लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको अवेलेबल रहेंगे। प्रेस क्लिपिंग के साथ ही साथ हम हर सैटरडे को कुछ आपको अलग से रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिनमें योजना और कुरुक्षेत्र के एक एक आर्टिकल होते हैं, एक आर्टिकल योजना हिंदी से और एक आर्टिकल योजना इंग्लिश से, ठीक इसी तरह से एक आर्टिकल कुरुक्षेत्र हिंदी से और एक आर्टिकल कुरुक्षेत्र इंग्लिश से, यानी कि 4 आर्टिकल्स इन दोनों मैगजीन से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और मैं इस बात पर यहां विशेष जोर देना चाहूंगा कि मित्रों जो आर्टिकल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं परीक्षा के दृष्टि से, आपको पूरी गंभीरता के साथ उन आर्टिकल्स को लेना चाहिए और कोशिश कीजिए कि पढ़ने के बाद उस पर अपना छोटा मोटा एक नोट्स भी बना लें, तैयारी कर लें ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे समय समय पर दोहरा भी सके। और मित्रों इसी के साथ ही एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है जो खासकर सिविल सर्विस का जो मेन एग्जामिनेशन होता है उसके पैटर्न पर, उसी के सब्जेक्ट उसी के पैटर्न की कोशिश होती है कि वो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में मदद कर सके। ये मित्रों खासकर आपके अभ्यास के लिए होता है और मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो इस वीकली क्वेश्चंस को पूरी गंभीरता से लें और ऐसा नहीं है कि प्रश्न पढ़ें और उस पर लिखना शुरू कर दें, उन्हें चाहिए कि उस प्रश्न को लिखने से पहले उसकी तैयारी करें, जब उन्हें पूरी तरह से तैयारी का अपना भरोसा हो जाए फिर वो प्रश्न को अटेम्प्ट करें, वो उसे अपनी तुरंत की तैयारी के आधार पर ही लिखना शुरू न करें क्योंकि ये अभ्यास का है आपके मूल्यांकन के लिए नहीं है। और मित्रों इसी के साथ ही जो हमारे 3rd और 4th बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा और जो 1st और 2nd बैच के स्टूडेंट हैं उनको एक स्पेशल नोट्स भेजा जाएगा। इस बार का जो स्पेशल नोट्स है फ्रेंड, मैं आप 1st और 2nd बैच के स्टूडेंट्स को स्पेशली बताना चाहूंगा कि अपेक्षाकृत थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये बहुत ही खूबसूरत है और इसमें खासकर वैश्वीकरण के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो पूरी की पूरी दुनिया की जो तस्वीर बनी है या बदली है, चाहे वो बदतर हुई हो या बेहतर हुई हो, उसका बहुत गजब का बड़ा बौद्धिक लेखा जोखा है, तार्किकता के साथ अपनी बात रखी गई है और मैं समझता हूं कि यह आर्टिकल ऐसा है जो बड़े लंबे समय तक आपको खासकर ग्लोबलाइजेशन पर समीक्षात्मक रास्ता दिखाता रहेगा। मैं इसी संदर्भ में एक बात और ऐड करना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि भारत में अब ग्लोबलाइजेशन के 25 साल पूरे हो चुके हैं और 25 साल एक बहुत इंपॉर्टेंट वक्त होता है। आपने देखा कि जैसे ही ये 25 साल पूरे हुए सभी अखबारों में लगभग हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारे आर्थिक क्षेत्र की जो अलग अलग समस्याएं हैं या उनके अलग अलग लेखा जोखा इन 25 सालों का आया। उस पर आपको आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। नो डाउट कि उसी से जुड़ा हुआ है हमारा समाज, हमारी संस्कृति, उस पर ये आर्टिकल स्पेशली बेस्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की समीक्षा, एक कंप्लीट समीक्षा पर कुछ भी एग्जाम में पूछा जाना जरा भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें एक्सपेक्ट ही करना चाहिए कि ऐसा कुछ होगा। तो मित्रों, वो जो आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड बैच को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कंटेंट के लिहाज से भी पढ़िएगा, भाषा की दृष्टि से भी पढ़िएगा, और इस लिहाज से भी पढ़िएगा कि अपनी बातों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी। अब एक और मैं आपको छोटी सी सूचना दे दूं, सैटरडे और संडे के बाद जो उस नेक्स्ट डे है यानी मंडे, उस दिन मित्रों 15 अगस्त है, यानी कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। तो मित्रों, निश्चित रूप से चूंकि उस दिन गजेटेड हॉलीडे है, तो उस दिन भी डेली ऑडियो गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, चूंकि उस दिन मुझे यह अवसर नहीं मेरे पास होगा कि मैं आप लोगों को सीधे सीधे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकूं, तो आप यूं कह लीजिए कि पूर्व संध्या तो मैं नहीं कह सकता, कई दिन पूर्व मैं आप सभी को, अपने प्रिय श्रोताओं को, अपने प्रिय जनों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत और बहुत बधाइयां। और दोस्तों, इसी के साथ ही मेरी एक छोटी सी सलाह भी है, और सलाह ये कि आपको मालूम है कि स्वतंत्रता दिवस पर, हर स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, तो उनका भाषण होगा। मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करें कि उनके भाषण को बड़े इत्मीनान के साथ सुने, स्पेशली इत्मीनान के साथ आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, हमारे देश के प्रमुख के रूप में बोल रहे हैं, आप जानते हैं कि लाल किले से जो भाषण दिए जाते हैं उनकी अपनी एक अलग सेंक्टिटी होती है, उनका अपना एक महत्व होता है, और उसमें आपको दो तीन चीजें अक्सर मिलती हैं। पहला तो यह है कि बीच बीच में आपको सुनने को मिलेगा कि सरकार ने अब तक क्या किया है, सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, ये बात आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। सरकार अभी क्या क्या कर रही है, ये भी बातें आपके लिए जरूरी हैं कि आप जानें, और फिर आगे क्या करेगी, यानी कि देश की जनता से किए गए वायदे, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में ये धारणा बन सके कि सरकार किस दिशा में किस तरीके के कदम उठाने जा रही है। तो मित्रों, आप कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुने, और अगर आप उसी समय नहीं सुन पाएंगे तो बाद में भी यह अवेलेबल होता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, इस मायने में आप लोगों को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिल चुकी है। तो मित्रों, यह 15 अगस्त की बात थी, और डेफिनेटली इसका मतलब यह हुआ कि जो डेली ऑडियो गाइडेंस है वो ट्यूजडे को, यानी कि बीच के तीन दिन के गैप के बाद, आप लोगों के साथ मैं फिर से डीएजी लेकर, डेली ऑडियो गाइडेंस लेकर हाजिर हो सकूंगा। तो दोस्तों, इस लंबी सूचना के बाद अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं कुछ आपको एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं शुरुआत करता हूं मित्रों अपने, मेरे एक दोस्त मतलब ये नौजवान आप ही जैसे दोस्त हैं राहुल सिंह, उनका एक मेरे पास मेल आया है, और उन्होंने लिखा है कि, खासकर आपको ध्यान होगा कि मैंने जमीन पर गिरे हुए फूलों को से पूजा करने की या ईश्वर पर चढ़ाने की एक बात कही थी, तर्क कुछ दिए थे, तो उसको लेकर के उन्होंने लिखा है कि एक जब बुजुर्ग व्यक्ति से उनकी जब बात हुई इस बारे में कि टूटे हुए फूल से भी आराधना की जा सकती है, अर्चना की जा सकती है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि, मैं उन्हीं के शब्द पढ़ रहा हूं, मैं मानता हूं कि धरती सबसे पवित्र है, परंतु धरती पर गंदी नालियां भी बहती हैं, तो क्या हम उसके जल को सिर्फ यह मानकर प्रयोग करें कि वह धरती पर है और धरती सबसे पवित्र है। मित्रों, ये मतलब उन्होंने अपना तर्क दिया, तो क्या हम धरती पर गिरे हुए फूलों को भी ईश्वर पे चढ़ाएं? मित्रों, मैं इस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं और हमें हर विचार का सम्मान करना चाहिए, लेकिन तर्क वितर्क करने की गुंजाइश भी उतनी ही उसमें बनी रहती है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस पर अपने अपने तर्क ढूंढें, अपने अपने विचार व्यक्त करें। एक व्यक्ति का विचार है जो फूलों के संदर्भ में उन्होंने गंदी नालियों का उदाहरण दिया, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको अब मान लीजिए कि इस विचार से अपनी सहमति व्यक्त करनी है, फिर तो बात खत्म हो गई, आप स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि चाहें तो एक दो तर्क आप और भी जोड़ सकते हैं, चार पांच जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, उनके तर्क अपने आप में गलत हैं, तब फिर आप अपने लेवल पर उन बातों को ढूंढिए जिससे आप सिद्ध कर सकें कि ये तर्क गलत है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक तार्किक क्षमता पैदा होगी, विश्लेषण की शक्ति आएगी, एक दृष्टि विकसित होगी, जो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। देखिए, सिविल सर्विस में जो कहा जाता है कि डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन उपयोगी होता है, तो डिस्कशन से क्या फायदा होगा, क्या कैसे उपयोगी होगा? डिस्कशन से यही उपयोगी होता है कि आप सामने वाले के ओपिनियन के बारे में विचार करते हैं, फिर उसके अपोजिट, उसकी काट में आप अपने ओपिनियन देते हैं। तो मित्रों, आप सब इस ओपिनियन के बारे में सोचें, अपने अपने ढंग से इस पर विचार करें। मैं इसीलिए अभी अपने विचार आप लोगों के सामने नहीं रखने जा रहा हूं, क्योंकि फिर वो मेरे विचार होंगे और मैं जानता हूं कि हो सकता है कि फिर मेरे विचार आप लोगों के विचार पर कुछ ऐसे हावी हो जाएं कि फिर आप सोच ही न सकें, या हो सकता है कि आपके विचारों को ही मैं कह जाऊं तो फिर आपकी चीज छीनने का मैं अपराधी बन जाऊंगा। इसलिए मैं इस पर अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, मैं अपने उस विश्वास पर, अपने उस विचार पर बिल्कुल दृढ़ हूं, 100% अभी भी पहले की तरह ही दृढ़ हूं। मैं उनके इस तर्क से जरा भी विचलित नहीं हुआ हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अगर मुझे मुझसे थोड़ा सा पूछेंगे तो मुझे वो तर्क जैसा लग ही नहीं रहा है ना, मुझे वो बात बहुत ही थोथी या कुतर्क या जबरदस्ती जो बात कही जाती है ना कि मेरी मुर्गी के तीन टांग जैसी बात मुझे लग रही है, बहुत ही हल्की बात लग रही है। ये मेरा क्यों लग रही है, इसके लिए मेरे पास तर्क हैं, लेकिन मैं अभी वो आपके सामने वो रखने नहीं जा रहा हूं, है ना। आप अपनी तरफ से सोचिए, एक अच्छा होमवर्क ही कह लीजिए, इसे मान लें। दोस्तों, अब ज्यादा वक्त तो नहीं है, अब मैं आपको एक ही किस्सा सुना पाऊंगा। इस किस्से को सुनिए, और मैं समझता हूं कि चूंकि आप सब उस उम्र में हैं, एक तरफ रोमांटिक चीजें दिमाग में चलती हैं, दूसरी तरफ कैरियर का संघर्ष अलग है, उस तरह की चुनौतियां अलग हैं, तो आपके लिए ये कुछ मौजू हो सकता है, सामयिक हो सकता है। ये राज कपूर जी से जुड़ा हुआ किस्सा है दोस्तों, तो मैं इससे भी लिखे हुए को पढ़ रहा हूं, है ना, आप इसलिए मेरी उस भाषा पर मत जाइएगा। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही राज कपूर को एक सजाती लड़की से प्रेम हो गया, यानी अपनी ही जाति की लड़की से प्रेम हो गया। चूंकि दोनों परिवार परिचित थे, इसलिए शादी हो जाना भी संभव थी। लड़की के पिता ने कहा कि वे उसकी एकमात्र संतान से विवाह करके, वे मतलब राज कपूर, लड़की के पिता ने राज कपूर से कहा कि तुम मेरी एक ही बेटी है, तुम इससे विवाह कर लो, और एक ही शर्त है कि विवाह करके तुम्हें घर जमाई बनना पड़ेगा, यानी कि मेरे ही यहां रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इकलौती संतान थी अपने माता पिता की। घर जमाई हो जाए, उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन और कारोबार को संभालें, वो बहुत ही धनी व्यक्ति थे। राज कपूर ने स्वीकार किया कि हां, मैं आपकी लड़की से प्रेम करता हूं, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य फिल्मकार बनना है, किसी जमीन और जायदाद का मालिक बनकर उसकी सुविधाओं का भोग करना नहीं। और उनके इसी कहने पर रिश्ता टूट गया। कुछ समय बाद वे उस लड़की से मिले तो उसने अंगूठा दिखाकर कहा, फिर ना आना इन गलियों चौबारों में, ये उसने कहा। इस दृश्य का उपयोग राजकुमार ने फिल्म प्रेम रोग में किया है, और आपको ध्यान होगा कि इस पर लिखा, इस पर एक, इसी पर बेस्ड एक गीत भी प्रेम रोग फिल्म में है। मित्रों, देखिए इसमें क्या, इसमें खूबी क्या है, इस खूबी को जरा सा जानिए, हालांकि वैसे सुनिएगा तो छोटा मोटा किस्सा है, बात खत्म हो गई। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, विशेषता यह है मित्रों, पहली बात तो यह कि उन्होंने सुख सुविधा पूर्ण जीवन को ठुकरा दिया, उनको सैकड़ों एकड़ जमीन बिना कुछ किए मिल रही थी, देखते देखते करोड़पति अरबपति वो बन जाते, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया, नहीं मुझे सुविधा युक्त जीवन नहीं चाहिए। मैं अपने संघर्ष को जीवित रखना चाहता हूं, जैसे राम राज्य पाठ सब छोड़ करके जंगल को चले गए। दशरथ अपने पिता दशरथ की बात नहीं मानी। संघर्ष का अपना एक स्वाद होता है, संघर्ष तकलीफ नहीं है, संघर्ष अभिशाप नहीं है, है ना, उस जीवन जीने का एक अंदाज है, वो उन्होंने स्वीकार किया। आप दूसरा देखिए, दूसरी बात उन्होंने की कि वो उनसे प्रेम करते थे, ये नहीं कि ये जो रिश्ता है ऐसे ही आ गया था, विवाह का प्रस्ताव आ गया था, वो ऑलरेडी उससे प्रेम करते थे और सच्चाई के साथ उन्होंने स्वीकारा भी कि यस आई डू, मैं आपकी लड़की से प्रेम करता हूं। तो प्रेम करते थे इसे उन्होंने स्वीकारा, लेकिन इस प्रेम को उन्होंने अपने कैरियर के ऊपर अमर बेल की तरह छा जाने नहीं दिया। जब कैरियर की बात आई तो बड़े विनम्रता के साथ वो उससे अलग हो गए। देखिए अब यहां आप लोग दूसरे तरीके से भी इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया, वो स्वार्थी थे, है ना, वो एक अलग अप्रोच आपकी हो सकती है। लेकिन अब हम नहीं जानते कि उस समय का प्रेम ये किस तरीके का था, मन ही मन का प्रेम हो सकता है, गॉड नोज, हमको सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है। तो उन्होंने अपने कैरियर को अधिक महत्व दिया, जीवन के उद्देश्य को आप कह लीजिए कि अधिक महत्व दिया। और तीसरी बात ये देखिए कि उन्होंने अपने प्रेम को जीवित भी रखा। मित्रों, प्रेम को जीवित रखने के लिए विवाह करना अनिवार्यता नहीं है, वो भाव है, और भाव को उन्होंने जीवित रखा। किस तरीके से जीवित रखा, जब मुलाकात हुई तो उस लड़की ने कहा कि फिर ना आना इन गलियों चौबारों में, और इस स्मृति को उन्होंने अपने फिल्म प्रेम रोग में अमर कर दिया, जीवंत कर दिया। मतलब उस प्रेम की हरियाली को उन्होंने ताउम्र अपने अंदर बनाए रखा, संजोए रखा। अब यहां आप ये भी कह सकते हैं कि कृष्णा राज कपूर जी से उनकी शादी हुई थी तो उनसे प्रेम न करके वो इधर प्रेम कर रहे थे। तो मित्रों, ये तो प्रेम को देखने का हमारा अपना अपना नजरिया है, कितना संकीर्ण है, कितना उदार है, कितना यथार्थ है, कितना आदर्शवादी है, ये एक अलग अलग बातें हैं, है ना। मेरी दृष्टि में कुछ और हो सकता है, इसका विश्लेषण आपकी दृष्टि में कुछ और हो सकता है, और आप अपने ढंग से अपना विश्लेषण करने के लिए ठीक उसी तरह से स्वतंत्र हैं जिस तरह से आप मुझे अपना विश्लेषण करने की स्वतंत्रता देंगे। तो मित्रों, ये आज के लाइफ मैनेजमेंट के बारे में था। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों देखिए, सीधे सीधे तो AIR न्यूज में कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्ट में कल के AIR न्यूज में काफी महत्वपूर्ण बातें मुझे दिखाई दी। मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट में भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला। जम्मू कश्मीर के मामले में मैंने कल के अपने डेली ऑडियो गाइडेंस में आप लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर पर हमें कौन सा स्टैंड लेकर चलना चाहिए, जो हमारे राष्ट्र का स्टैंड है। वहां हमें अपनी कोई बौद्धिकता और एक्टिविज्म और फलाने फलाने, मुझे लगता है कि ये मेरी सलाह है कि नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इश्यू ऐसा है, बहुत ही संवेदनशील इश्यू है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ ये मामला है। लेकिन कल के न्यूज में आपने देखा कि उसमें मानवाधिकार शब्द आया है, क्योंकि होता यह है मित्रों कि जहां भी हमारे फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं वहां अक्सर मानवाधिकार का प्रश्न उठा लिया जाता है। जैसे आप जैसे बस्तर, आंध्र प्रदेश वगैरह एरिया में जहां नक्सलवादी चीजें हो रही हैं, नक्सलाइट अपना कहर ढा रहे हैं, वहां भी हमारी फोर्सेज BSF ये सब नाम आप सुनते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉय हैं। मुठभेड़ होती है, उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं, उस नक्सलाइट भी होते हैं, कभी कभी पब्लिक भी होती है, और जब लोग मारे जाते हैं तो वहां मानव अधिकार आयोग अपनी उंगली उठाता है कि साहब ये मनुष्य के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, वो अत्याचार कर रहे हैं, ये बातें होती हैं। तो नक्सलाइट एरियाज में भी इसी तरह से हो जाते हैं, जैसे मणिपुर में आप देख रहे हैं कि जो विशेषाधिकार कानून है वहां भी इस तरह की बातें होती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ टिप्पणियां भी की। और ठीक है, स्थिति कश्मीर में भी होती है। कश्मीर में एक तरफ उग्रवादी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से हथियारों का, बम का, सारे अब उनसे जो कुछ भी बन पड़ रहा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे बचाव के लिए जो फोर्सेज हैं उनको भी अपने बचाव के लिए या स्थिति को नियंत्रित करने के लिए या दोनों के लिए फिर अपनी ताकत का प्रयोग करना पड़ता है। और डेफिनेटली जब भीड़ में इस तरह की ताकत का प्रयोग किया जाएगा तो कुछ इस तरह की घटनाएं हो ही जाती हैं, और फिर से वहां मानव अधिकार आयोग अपनी तरफ से प्रश्न खड़े करता है। ठीक है मित्रों, वो मानव अधिकार आयोग के उस दायरे में आता है और उन्हें बना उसकी उसका गठन भी इसीलिए किया गया है कि वो मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करे, तो वो अपनी बात रखता है, उसे अपनी बात रखने का अधिकार है, और फोर्सेस को या सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो मित्रों, यहां जो मानव अधिकार वाला जो प्रश्न है, मैं आपके सामने खासकर रखना चाहूंगा कि मानव अधिकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बकायदे सिलेबस में है, जनरल स्टडीज के मेंस के अगर आप सेकंड पेपर के सिलेबस को देखें तो स्पेशली वो मेंशन किया हुआ है। 2014 में जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है, देखिए कि उसमें मानव अधिकार पर किस तरीके का प्रश्न आया था, उससे आपको थोड़ा सा एक टेस्ट ऑफ क्वेश्चन की जानकारी होगी, क्योंकि जितने भी अब इस तरह के प्रश्न आते हैं मानकर चलिए कि वो ज्यादातर करेंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। किताबों की दुनिया को अब आपको भूलना पड़ेगा, लेकिन किताबों को भूल नहीं सकते, किताबें ही आपको फाउंडेशन देंगी और तभी आप तुरंत की दुनिया को समझ सकेंगे, तभी समसामयिकता करंट अफेयर्स आपकी पकड़ में आएगा, अदरवाइज एनालिसिस नहीं हो सकती। और प्री के एग्जाम में आपने देखा ही है कि करंट कंटेंट का कितना ज्यादा महत्व था, कितना अधिक वेटेज था, और ये मान करके चलिए कि ये लगातार अब दिशा यही है, करंट कंटेंट की बहुत ज्यादा अहमियत होगी, और ये केवल प्री में ही नहीं होगी बल्कि मेंस में भी होगी। टॉपिक आपके किताबों के होंगे लेकिन उसकी एनालिसिस जो होगी वो करंट पर बेस्ड होगी। जैसे यहां टॉपिक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, लेकिन आप देखिए कि उसका जो बेस है वो किस तरीके से करंट है। क्वेश्चन है मित्रों, ये 12.5 नंबर का, 200 वर्ड्स में लिखना है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों मैकेनिज्म का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। एक स्टेटमेंट है, उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर एनएचआरसी की भूमिका का आकलन कीजिए। एनएचआरसी का मतलब है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका का आकलन कीजिए। अब आप देखिए कि उसको किस तरह से उन्होंने एकदम करंट से जोड़ दिया है। मैं मित्रों, मैं आपकी सुविधा के लिए जल्दी से इसे इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया कैन बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट्स tasks are adequately supported by other mechanism that ensure the accountability of a government. In light of the above observation, assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standard. तो एक झलक के लिए मित्रों मैंने आपको ये बात बताई है ताकि आपके अंदर तैयारी करने की एक सही दिशा या यूं कह लीजिए कि एक फोकस दृष्टि विकसित हो सके। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो आपने देखी सुनी कि मातृत्व अवकाश विधेयक को लेकर के थी, कि जिसमें जो मैटरनिटी लीव जो दी जाती है माताओं को बच्चे होने पर, तो पहले 12 सप्ताह की थी, मतलब ये पेड लीव होती है कि आप घर पर रहिए और आपको 12 सप्ताह की सैलरी, पूरी सैलरी मिलेगी, जिसे बढ़ाकर अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की बातें अब आ रही हैं कि किस तरह से महिलाओं को अवसर प्रदान किए जाएं और किस तरीके से उनको वो उस तरह की सुविधाएं दी जाएं ताकि वे अपने जो दायित्व हैं, नौकरी के दायित्व या घर से बाहर के जो कामकाज हैं उनके दायित्वों को अच्छे से निर्वाह कर सके, तो उसे बढ़ा करके 26 वीक कर दिया गया है और वो 2 बच्चों तक की माताओं के लिए होगा। और आंकड़े भी आपने आंकड़ा एक सुना है न्यूज में ही कि इससे 18 लाख कामकाजी महिलाओं को फायदा पहुंचेगा, तो एक अच्छा है, मतलब एक कह लीजिए कि एक अच्छा स्टैंड है गवर्नमेंट का, तो ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि मित्रों, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको हर साल ऑलमोस्ट मेंस में मिलेगा, मेंस में हर साल होता है। आपको मैं एक फिर से एक जानकारी के लिए 2014 का ही एक क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं जो पेपर फर्स्ट का है, क्वेश्चन पेपर 1 में आता है। आप देखिए, सीधे सीधे कामकाजी महिला पर प्रश्न है कि भारत में एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृ तंत्र किस प्रकार प्रभावित करता है। छोटा सा क्वेश्चन है, 10 नंबर का है, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। हाउ डज पैट्रियटिक इंपैक्ट द पोजिशन ऑफ ए मिडिल क्लास वर्किंग वीमेन इन इंडिया। जो पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है वो किस तरह से कामकाजी महिला, स्पेशली वर्ड देखिए कामकाजी महिला के बारे में इसमें प्रश्न पूछा गया है। यहां भी हम मातृत्व अवकाश कामकाजी महिलाओं के ही संदर्भ में है। तो मित्रों, चूंकि अब एक कानून बनाया गया है, उनको ये सुविधा प्रदान की गई है, तो स्वाभाविक है कि आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। आपसे ये अपेक्षा की ही जाती है कि आप इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो मित्रों, ये मैंने आपको एक नमूना बताया। और एक और टॉपिक मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, जो आपके फ्रेंड्स न्यूज का ही है और वो दलितों को लेकर है। आपने देखा है, सुना है मित्रों, कि दलितों को लेकर के भी सरकार का स्टेटमेंट आया है हमारे गृहमंत्री जी का। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार दलितों के लिए हर संभव कोशिश करेगी, उनके उत्थान के लिए, उनकी रक्षा के लिए। और कुछ समय से आप देख रहे हैं कि किस तरह से दलितों के आंदोलन हो रहे हैं, कभी गौ संरक्षण को लेकर के कुछ घटनाएं घट रही हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक ने सुसाइड किया, तो इस तरह की कुछ चीजें सामने आ रही हैं। तो स्वाभाविक है कि इसी से कोई एक इश्यू जो है ना, वो फिर राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। और मान करके चलिए कि अभी दलित एक राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर आप जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर के सिलेबस को देखेंगे मित्रों, तो उसमें एक तो सेकेंड पेपर का जो टाइटल ही है, उसमें सोशल जस्टिस शब्द प्रयोग किया गया है, मतलब तो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय किन के लिए होगा? बाकी सबको तो न्याय मिल रहा है, लेकिन सामाजिक न्याय किसको, किसके लिए अलग से उसका उल्लेख किया गया है? तो जब आप उसके डिटेल्स में जाएंगे, सेकेंड पेपर के डिटेल्स में, तो उसमें एक शब्द फिर से आपको आगे मिलेगा, वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि जो अति संवेदनशील जो वर्ग हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या योजनाएं हैं, क्या कानून है, क्या व्यवस्थाएं हैं, वो मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस में। अगर आप ध्यान से सिलेबस पढ़ेंगे तो वो शब्द आपको मिल जाएगा। तो ये जो दलित हैं, तो ये इसी तरह के संवेदनशील वर्गों में आते हैं, यहां तक कि महिलाएं और बच्चे भी इसी वर्ग के हिस्से हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई ऐसा बड़ा आधार नहीं है। बच्चों को ही देख लीजिए, उनका उनकी कोई यूनियन नहीं है, कैसे अपनी आवाज उठाएं, वो तो पेरेंट्स जो कुछ भी हैं वो है। तो ये तो अति संवेदनशील वर्ग में आते हैं। तो इस पर भी मित्रों, मैं आपको 2013 का एक क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं। आप आज सोचेंगे कि सर को क्या हो गया है कि वो क्वेश्चन ही पढ़ पढ़ करके सुनाए जा रहे हैं। मित्रों, बहुत जरूरी है कि आप केवल टॉपिक को ना जानें, बहुत जरूरी उससे ज्यादा ये है कि आप टॉपिक में क्या दिशा है, क्या केंद्र है, किस उसके शेड्स क्या हैं, किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसको भी जानें। केवल टॉपिक जानने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि टॉपिक तो अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। तो जब तक आप फोकस्ड तरीके से चीजों को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक सिविल सर्विस थोड़ा क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आज तीन क्वेश्चंस मैंने जानबूझकर के आपके लिए चुने हैं, जो न्यूज पर ही टॉपिक मैंने आपके न्यूज से ही निकाले हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, ये भी 200 वर्ड्स में ही आपको उत्तर देना है। केंद्र सरकार प्रायः राज्य सरकारों के समाज के अति संवेदनशील वर्गों के कष्ट निवारण में खराब प्रदर्शन की शिकायत करती है। जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के सुधार हेतु सभी क्षेत्रों में केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं की पुनर्रचना का उद्देश्य राज्यों को उनके बेहतर कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बड़ा लंबा प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना है, और मुझे लगता है कि लगभग 70-80 शब्दों का तो ये क्वेश्चन ही हो गया है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं मित्रों, आपकी सुविधा के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली कंप्लेन्स ऑन द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इरेडिकेटिंग सफरिंग ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अक्रॉस द सेक्टर ऑफ द एमिलियोरेटिंग द कॉज ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एम्स एट प्रोवाइडिंग फ्लेक्सीबिलिटी टू द स्टेट्स इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन क्रिटिकली इवेल्युएट। ये क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों। तो ये मैंने आपके सामने न्यूज पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तीन वो नमूने के बतौर रखे हैं मित्रों, और मुझे लगता है कि इससे डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ मदद मिलेगी ही। दोस्तों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर, आता क्या हूं बस यही कह के खत्म करना चाहूंगा वक्त की सीमा को देखते हुए कि आपके नॉलेज सेंटर पेस क्लिपिंग्स में उस में अवेलेबल हैं, आप देख करके अपने हिसाब से जिसे आप अपनी जरूरत का टॉपिक समझते हैं उसे आप ध्यान से पढ़ लें। अंत में दोस्तों मैं आता हूं ईमेल पर, तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक मेल मेरे पास आया है शुभम ठाकरे का जो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, उन्होंने लिखा कि अभी वो एक प्रोग्राम में गए थे जिसमें हमारे अतहर आमिर आए हुए थे और उन्होंने अतहर आमिर को सुना और उन्होंने बड़ी खुशी व्यक्त की है कि उन्होंने लगभग वही सारी बातें बताई जो कि आप बताते रहे हैं और आपकी किताबों में भी लिखी हुई हैं, सारी बातें वही थी, यहां तक कि उनके अतहर आमिर की पर्सनालिटी भी उनको बहुत अच्छी लगी और मेरी उन्होंने किताब पढ़ी थी पर्सनालिटी डेवलप स्टूडेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उन्होंने कहा कि उसकी बहुत सी चीजें मैंने अतहर में देखी। तो शुभम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं खासकर आपके इस कोशिश की तारीफ करूंगा कि जहां भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं वहां सभी स्टूडेंट को जाना चाहिए और आप वहां गए। एक मेल है मित्रों वीरेंद्र कुमार का जो बेगूसराय बिहार से हैं, उन्होंने लिखा है कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं और उन्हें इससे बहुत खुशी होती है कि वीरेंद्र जी मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई और एकेडमी की तरफ से इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। तो मित्रों मेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देने के साथ ही मैं यहां कुछ मित्रों के नाम लेना चाहूंगा। वे हैं सीपी अग्रवाल जयपुर से, मनीषा जायसवाल सतना मध्य प्रदेश से, भावना भारती, कुलदीप शुक्ला बड़ोदरा से, सूरज गुप्ता जमशेदपुर से, अमित कुमार बोकारो झारखंड से, अखिलेश कुमार सासाराम बिहार से और चिरंजीवी कुमार वीरपुर बिहार से। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त करने की मैं इजाजत चाहूंगा और साथ ही 3 दिनों तक अनुपस्थित रहने की भी इजाजत चाहूंगा। डेफिनेटली 3 दिन कुछ ज्यादा मेरे लिए भी हो जाते हैं, 2 दिन की तो आदत पड़ गई है, 1 दिन और मुझे आप लोगों को मिस करना पड़ेगा, उस वह दिन थोड़ा सा खाली खाली जरूर महसूस होगा, लेकिन कोई बात नहीं मित्रों, हम मंगलवार को फिर मिलेंगे और फिर डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये 3 दिन आपके बड़े सुखद हों और एक बार फिर से मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की कई दिनों पहले मैं कह लूँ अब क्या काउंट करूँ बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और देश के बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी। तो मित्रों इसी के साथ ही अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।